नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हमारे सामने आता ही रहता है, नोटिस लिखना।
हाँ बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जरूरत है कई जगहों पर।
हमारे पास स्रोत के तौर पर अध्याय 12 है। इसका शीर्षक भी बड़ा कैची है, अटेंशन प्लीज, नोटिस राइटिंग। और ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटी मगर एकदम असरदार और जरूरी सूचनाएं तैयार की जाएं।
सही कहा, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना।
तो स्रोत सामग्री साफ तौर पर नोटिस लिखने की कला पर ही फोकस करती है, कैसे जानकारी दें, लोगों को बुलाएं या फिर कोई जरूरी निर्देश जारी करें।
हाँ, मतलब कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल तरीका।
आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अध्याय के जरिए समझें कि ये नोटिस असल में क्या बला है, इसका सही फॉर्मेट क्या होता है, इसका मकसद और लिखने का लहजा मतलब टोन कैसा होना चाहिए।
और कुछ उदाहरण भी देखेंगे, है ना?
हाँ बिल्कुल, कुछ उदाहरणों को भी बारीकी से देखेंगे। तो चलिए इस अध्याय की मदद से, जैसा कि ये खुद कहता है, हम सब मिलकर ऑफिशियल अनाउंसर्स बनने की कोशिश करते हैं।
चलिए।
अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से, ये नोटिस होता क्या है आखिर? अध्याय कहता है कि ये फॉर्मल राइटिंग का एक छोटा सा टुकड़ा है, पर इसका असली काम क्या है, मतलब क्यों लिखते हैं इसे?
देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के एक समूह, जैसे कि मान लीजिए स्कूल के छात्र हैं या ऑफिस के कर्मचारी या किसी क्लब या सोसाइटी के सदस्य, उन तक कोई खास जानकारी पहुंचाना।
अच्छा,
ये जानकारी देने के लिए हो सकता है या किसी कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने के लिए या फिर कुछ करने या ना करने के निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होता है। संक्षेप में कहें तो ये एक औपचारिक तरीका है कम शब्दों में ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, एक तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट।
समझ गया, मतलब एक साथ कई लोगों को औपचारिक सूचना देना, वो भी सीधे सीधे। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पर। अध्याय में एक स्पष्ट फॉर्मेट का जिक्र है। कौन कौन से हिस्से जरूरी हैं एक नोटिस के लिए, ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है शायद।
हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इसका एक बिल्कुल तय फॉर्मेट है और हर हिस्से का अपना महत्व है, जैसा अध्याय की तालिका में भी दिखाया गया है।
अच्छा, क्या क्या है उसमें?
सबसे पहले आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम। इससे साफ पता चलता है कि नोटिस जारी कौन कर रहा है। जैसे उदाहरण में सनराइज पब्लिक स्कूल का नाम है, तो पढ़ने वाले को पता है कि ये सूचना कहां से आई है।
ठीक है, अथॉरिटी पता चल जाती है।
बिल्कुल। फिर डेट, दिनांक, जिस दिन नोटिस लिखा गया वो तारीख डालना जरूरी है, जैसे 16 जुलाई 2025। इससे पता चलता है कि सूचना कितनी नई है, रेलेवेंस पता लगता है।
टाइमिंग के लिए इम्पोर्टेंट है।
हाँ, इसके बाद शब्द नोटिस लिखना होता है, आमतौर पर बड़े अक्षरों में, ताकि तुरंत नजर पड़े और पता चल जाए कि एक औपचारिक सूचना है, कोई कहानी नहीं है।
अच्छा, वो हेडिंग की तरह? नहीं, हेडिंग तो अलग से है शायद।
हाँ, नोटिस लिखने के बाद आता है हेडिंग, शीर्षक। ये बताता है कि नोटिस किस बारे में है, जैसे साइंस क्विज कंपटीशन। एक अच्छा हेडिंग पाठक का ध्यान खींचता है और उन्हें फौरन समझने में मदद करता है कि ये उनके मतलब का है या नहीं।
ओके, मतलब सब्जेक्ट लाइन जैसा कुछ।
हाँ, कह सकते हैं। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, बॉडी।
जी,
मुख्य भाग। इसमें सारी अहम जानकारी होती है, क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, व्हाई, किसके लिए, फॉर होम।
अच्छा, सारी डिटेल्स यहीं आती हैं।
जी, जैसे उदाहरण में बताया गया है कि कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए साइंस क्विज 20 जुलाई को सुबह 10 बजे सभागार में होगा, तो यहाँ सारी जरूरी बातें, कार्यक्रम, समय, स्थान, टारगेट ऑडियंस और अगर जरूरी हो तो किससे संपर्क करना है, सब आ जाता है। और आखिर में सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। इसमें नोटिस जारी करने वाले का नाम और उसका पद, डेजिग्नेशन होता है, जैसे रवि कुमार, साइंस क्लब सेक्रेटरी। ये नोटिस को एक तरह की ऑथेंटिसिटी देता है, बताता है कि इस सूचना के लिए कौन जिम्मेदार है।
अच्छा, तो ये सारे हिस्से, इंस्टीट्यूशन का नाम, डेट, नोटिस शब्द, हेडिंग, बॉडी और सिग्नेचर, ये सब मिलकर एक मुकम्मल नोटिस बनाते हैं। कोई भी चीज मिस हुई तो गड़बड़ हो सकती है।
बिल्कुल, जानकारी अधूरी रह सकती है या कन्फ्यूजन हो सकता है। फॉर्मेट सीधा लगता है पर हर चीज अपनी जगह बहुत जरूरी है।
सही कहा। अच्छा, अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं नोटिस लिखते समय ध्यान रखने के लिए। वो क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये टिप्स होंगी शायद।
जी हाँ, बिल्कुल टिप्स ही हैं ये, और नोटिस को असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अध्याय इन्हें साफ तौर पर बताता है।
जैसे
पहला, नोटिस के चारों ओर एक बॉक्स बनाना चाहिए। ये देखने में उसे बाकी लिखी हुई चीजों से अलग करता है, एक साफ सुथरा और औपचारिक रूप देता है। नोटिस बोर्ड पर नजर सीधे उस पर जाती है।
हाँ, ये तो मैंने देखा है अक्सर, बॉक्स में ही होते हैं नोटिस।
दूसरा, नोटिस हमेशा संक्षिप्त, शॉर्ट और सीधा, टू द पॉइंट होना चाहिए। लंबी चौड़ी भूमिका या गैर जरूरी बातों से बचना चाहिए। कम शब्दों में मुख्य संदेश साफ साफ समझ आ जाना चाहिए। आजकल किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता लंबी चीजें पढ़ने का।
बिल्कुल, क्रिस्प एंड क्लियर।
एग्जैक्टली। तीसरा, इसे थर्ड पर्सन में लिखना होता है। इसका मतलब है कि मैं, आई और हम, वी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है।
अच्छा, ये क्यों?
इससे एक तरह की निष्पक्षता और औपचारिकता झलकती है। ऐसा लगता है कि सूचना व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्था की तरफ से है। जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है लिखना चाहिए, ना कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ।
समझ गया, अथॉरिटी दिखती है इससे।
हाँ। चौथा, भाषा का टोन फॉर्मल और पोलाइट होना चाहिए। भले ही आप कोई सख्त निर्देश दे रहे हो, भाषा सम्मानजनक और पेशेवर लगनी चाहिए। मतलब गुस्सा या ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज नहीं चलेगी।
ठीक है, लिहाजा सही रखना है।
और पांचवा, टेंस रूल्स का सही इस्तेमाल करना है। ज्यादातर नोटिस वर्तमान या भविष्य टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो या तो मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हैं या आने वाले किसी कार्यक्रम या निर्देश की घोषणा करते हैं। पास्ट टेंस का प्रयोग कम होता है।
लॉजिकली भी यही बनता है। ये थर्ड पर्सन और फॉर्मल टोन वाली बात वाकई गौर करने लायक है। इससे ऐसा लगता है जैसे कोई एक आदमी नहीं, पूरी संस्था बात कर रही है ना?
हाँ, बिल्कुल।
और ये इसे किसी साधारण मैसेज से अलग करके एक आधिकारिक घोषणा का दर्जा देता है। और वो बॉक्स वाली बात छोटी सी लगती है, पर सोचिए, नोटिस बोर्ड पर लगी 10 चीजों के बीच बॉक्स वाला नोटिस शायद सबसे पहले ध्यान खींचेगा।
बिल्कुल, प्रेजेंटेशन का भी असर होता है।
चलिए अब अध्याय में दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। पहला है सनशाइन पब्लिक स्कूल का इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन नोटिस। ये फॉर्मेट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को असल में कैसे दिखाता है, जरा इसे डाइसेक्ट करें।
बिल्कुल, पहले उदाहरण एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मेट का पूरा पालन किया गया है। सबसे ऊपर स्कूल का नाम सनशाइन पब्लिक स्कूल, फिर मोटे अक्षरों में नोटिस, उसके नीचे स्पष्ट हेडिंग इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन और बाईं तरफ डेट 16 जुलाई 2025। सब अपनी जगह पर,
ठीक है।
फिर बॉडी में साफ लिखा है कि सूचना कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए है, कार्यक्रम क्या है, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन कब है, 22 जुलाई 2025 सुबह 11 बजे, और कहाँ है, स्कूल ऑडिटोरियम।
सारी W's and H, what, when, where, for whom?
हाँ, और ये भी बताया गया है कि जो छात्र भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम किसे और कब तक दें, अपने हाउस कैप्टन्स को 19 जुलाई तक, डेडलाइन भी है। अंत में सिग्नेचर के नीचे जारी करने वाले का नाम रिया शर्मा और पद कल्चरल सेक्रेटरी दिया गया है।
भाषा देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, पूरी तरह फॉर्मल है। टेंस का प्रयोग भी सही है, विल बी हेल्ड, विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है, और हाँ, विजेताओं के लिए नाम का जिक्र इसे और अपीलिंग बनाता है, और बॉक्स भी बना हुआ है।
हाँ, वाकई बहुत कम शब्दों में सारी जरूरी जानकारी दे दी गई है, क्या, कब, कहाँ, किसके लिए और किससे संपर्क करें। कोई फालतू बात नहीं, एग्जैक्टली
टू द पॉइंट।
एग्जैक्टली।
अच्छा, अब दूसरे उदाहरण पे आते हैं। ग्रीनफील्ड अकेडमी का लाइब्रेरी बुक्स रिटर्न नोटिस। इसका मकसद थोड़ा अलग लगता है, ये कोई इवेंट नहीं है।
सही कहा आपने। दूसरा उदाहरण एक निर्देश है, इनविटेशन नहीं, पर यहाँ भी फॉर्मेट का कड़ाई से पालन हुआ है। स्कूल का नाम ग्रीनफील्ड एकेडमी, नोटिस शब्द, स्पष्ट हेडिंग लाइब्रेरी बुक रिटर्न और डेट 10 मार्च 2025।
ठीक है, स्ट्रक्चर वही है।
हाँ, इसकी बॉडी सीधे मुद्दे पर आती है। यह सभी छात्रों को निर्देश देती है कि वे अपनी लाइब्रेरी की किताबें 15 मार्च 2025 तक लौटा दें। इसमें न मानने का परिणाम भी साफ बताया गया है। Any late returns will be fined as per library rules.
मतलब वार्निंग भी है।
हाँ, और अगर कोई सवाल हो तो किससे पूछना है, लाइब्रेरियन, यह भी बताया गया है। अंत में सिग्नेचर के नीचे नाम अमित रावत और पद स्कूल लाइब्रेरियन है। यहाँ भी टोन फॉर्मल है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, और निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये दिखाता है कि नोटिस सिर्फ कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए ही नहीं, बल्कि नियमों और निर्देशों को प्रभावी ढंग से बताने के लिए भी उतना ही कारगर है।
हाँ, दोनों उदाहरण अलग अलग मकसद के होते हुए भी फॉर्मेट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिहाज से बिल्कुल सही हैं। इससे ये बात और पुख्ता होती है कि ये नियम कितने जरूरी हैं कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए।
बिल्कुल।
अब अध्याय के आखिर में कुछ सीखने के परिणामों, लर्निंग आउटकम्स और अभ्यास की गतिविधियों का भी जिक्र है।
हाँ, वो भी है।
अध्याय का लक्ष्य साफ है, पाठक समझें कि नोटिस क्या है, उसका फॉर्मेट, उद्देश्य और टोन क्या है। लगता है हमने इन सब पर ठीक ठाक बात कर ली है, लेकिन ये जो अभ्यास गतिविधियां दी गई हैं, इनका क्या महत्व है? सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता क्या?
नहीं, यहीं पर अध्याय की खूबी है कि वो सिर्फ जानकारी देकर नहीं रुकता, बल्कि उसे पक्का करने के लिए अभ्यास पर जोर देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। इसमें कई तरह की गतिविधियां हैं।
अच्छा, कैसी गतिविधियां?
जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो फॉर्मेट के अलग अलग हिस्सों को याद रखने में मदद करती हैं। फिर कंप्लीट द नोटिस है, जिसमें दिए गए संकेतों जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव के आधार पर पूरा नोटिस लिखना होता है। यह असल लिखने का अभ्यास कराता है।
अच्छा, मतलब खुद से लिखने की प्रैक्टिस।
हाँ। फिर डिजाइनर नोटिस बोर्ड जैसी गतिविधि है, जो थोड़ी क्रिएटिव है, प्रेजेंटेशन पर फोकस करती है। स्पीकिंग एक्टिविटी में नोटिस को सही प्रोनंसिएशन और टोन में पढ़ना होता है, और लिसनिंग एक्टिविटी में सुनकर मेन पॉइंट्स पकड़ने का अभ्यास होता है।
ओह, मतलब स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स भी कवर हो रही हैं।
जी, और आखिर में एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट भी है। ये बहुत काम की चीज है। छात्र खुद जांच सकते हैं कि क्या उन्होंने सही फॉर्मेट इस्तेमाल किया, क्या सारी जरूरी जानकारी डाली, क्या टेंस और टोन ठीक थे। ये गतिविधियां सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि करना सिखाती हैं, जिससे सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है।
हैं चेकलिस्ट अपनी यानी सेल्फ करेक्शन के लिए। तो कुल मिलाकर इस अध्याय के जरिए हमने नोटिस लिखने की पूरी प्रक्रिया को समझा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इसका ढांचा कैसा होता है, लहजा कैसा रखना चाहिए।
हाँ।
उदाहरणों से देखा कि ये नियम असल में कैसे दिखते हैं, और अभ्यास गतिविधियों से ये भी समझा कि इसे सीखने के लिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। ये तो साफ है कि नोटिस लिखना खासकर औपचारिक माहौल में एक बहुत काम का हुनर है।
बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे लिखने का ये छोटा सा टुकड़ा, एक नोटिस, असरदार होने के लिए कितने नियमों और स्ट्रक्चर का पालन करता है। ये सब इसलिए ताकि जानकारी बिना किसी कन्फ्यूजन के सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। कुंजी है स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी और ब्रेविटी। जरा सी चूक या अधूरी जानकारी गड़बड़ कर सकती है, इसलिए फॉर्मेट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण हैं।
सही बात है। अच्छा, एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है, और जिसका इशारा शायद डिजाइन नोटिस बोर्ड वाली गतिविधि में भी है, जिस तरह से नोटिस को पेश किया जाता है, क्या उसका रंग रूप, उसकी सजावट ध्यान खींचने में कोई भूमिका निभाती है?
आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं।
हाँ, मान लीजिए नोटिस लिखा तो बिल्कुल सही है, सारे नियम माने गए, पर अगर वो एक भद्दे से भीड़भाड़ वाले नोटिस बोर्ड पर कहीं कोने में लगा दिया जाए, तो क्या उसका असर कम नहीं हो जाएगा? क्या प्रस्तुति भी उतनी ही मायने रखती है जितनी की सामग्री? ये सिर्फ लिखने से आगे की बात है, सोचने के लिए।
ये बहुत ही जायज सवाल है। निश्चित रूप से एक साफ सुथरा, आंखों को अच्छा लगने वाला नोटिस बोर्ड या नोटिस का डिजाइन पाठक का ध्यान खींचने में मदद कर सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत सारी सूचनाएं एक साथ लगी होती हैं, जैसे स्कूल या कम्युनिटी सेंटर।
हाँ, कंपटीशन तो होता है अटेंशन के लिए।
बिल्कुल। मजबूत कंटेंट तो नींव है, लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति उसे नजरअंदाज होने से बचा सकती है। ये सोचना जरूरी है कि हमारा संदेश सिर्फ लिखा ही न जाए, बल्कि पढ़ा भी जाए और उस पर अमल भी हो। तो हाँ, प्रेजेंटेशन मैटर्स।
सही कहा, सिर्फ लिखना काफी नहीं, उसे पहुंचाना भी जरूरी है। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है।
बिल्कुल।